फाइव एलिमेंट। ये पांचों में से कहीं से घर्षण होगा ना, आकाश में आग लग जाती है, ये बिजली जाती है। वो हवा हवा में संघर्ष हो सके, बादल बादल में संघर्ष हो सके और उसमें से विद्युत पैदा हो जाती है। जो विश्व मानी इतनी शक्तिशाली होती है, ये सबको जला करके खा सकते। तो ये जो बर्बादनी है इतनी अधिक भयंकर होती है भाई, उसका दमन ऐसे नहीं होगा। वो वर्षों में जाकर के कहीं धीरे 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 तब जाकर के वर्षों लग जाते हैं, 10-20-50 वर्ष भी लग जाएंगे उसको शांत। और उसमें कोई भी पड़ जाए तो क्या होगा, समाप्त, जहाज भी समाप्त, जहाज भी समाप्त। इसे समझ के उसको देख सुन करके तब चलते हैं। ये सबका ऐसे ही हम संसार में हमारे बहुत तरह के कार्य, क्या कार्य, कोई रोग हो गया, कोई शोक हो गया, खेल खेल रहे हैं, आपके तो बड़ा अच्छा लग रहा है और लग गया यहां और एक आंख अंधा हो गया तो, और पैर में लग गया चोट लगी और पैर कट गया तो हो गया। मैं मद्रास में सेनिटोरियम में मैं गया कुछ दिन पालना किसी कारण से, किसी भक्त की सेवा करने, वहां पर भक्ति का सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर था, बैट पर खेलता था, कोई बोस उसका नाम था, वो उसमें जाती था। मैं घूम करके रोगियों को सांत्वना देने के लिए जाया करता, हमको देखकर के वो रोने लगा, अभी क्यों रोते हैं। कहा बंगाल भर में मोहन बगान सिंह में सबसे बेस्ट प्लेयर अपने समय का था, आज मुझे ये रोग हो गया थी और मैं कोई एक कौड़ी का भी मुझे नहीं पूछता। अच्छा वो कोई गुण है, कोई गुण साधारण मूर्ख लोगों के लिए ना, ये पीड़ा है ना, वो पीड़ा उसका कोई मूल्य नहीं, न तो उसके पास में पैसे से खर्च हो गए और कोई पूछने वाला नहीं, घर वाले किसी से नहीं, कुछ दिनों के पास में बेचारा मत जाए। हमने कहा कि भैया किसको सुना, देखो जो उससे संचित हो गए उसे जवाबदारी हो ही रही है और तुम्हारा आश्रय और भरोसा एकमात्र भवन है भवन नाम, उसको सरकार भी करने का भगवान की कृपा भी। इस तरह से ये सब जगत में ताप है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको ताप नहीं है, और संसार का कोई भी व्यक्ति उनके तापों को दूर कर दे, वो ताप कैसे दूर होगा, भगवान नाम। इसलिए हरिनाम करने पर सबसे पहले सब पापों को नाश करने वाली क्लेश रखनी भक्ति होती है, और दूसरा क्या होता है,
शुभदा।
शुभदा मैंने जितने प्रकार के शुभ और अच्छे नाम के द्वारा होगा, बिना नाम के द्वारा किसी का मंगल नहीं होगा और शुभ नहीं होगा, इसको गांठ बांध करके रखिए। यदि आकाश में फूल खिल जाए, यदि बर्फ से आग पैदा हो जाए, यदि खरगोश के सिंह जग जाए, यदि यदि अंधकार को अंधकार सूर्य को मिटा दे, किंतु भगवान भक्ति के बिना, नाम के बिना कभी भी कोई शांति नहीं। पानी में थे दर्द हो, ये पानी को बिलो लो और उसे घी निकल जाए, ये भी मान लेंगे, और रास्ते की धूल को लेकर के उसको घानी में दे दो तो तेल भी निकल जाए, ये भी मान लेंगे, किंतु बिन हरी भजन न यह सिद्धांत अवैध। शास्त्र भी ऐसा करें, मेरी अनुभूति कौन करा
है,
व्यास जी की भी अनुभूति, नारद जी की अनुभूति, अभी तक मीराबाई इत्यादि जितने लोग हैं सबकी अनुभूति, हम लोगों की भी अनुभूति उसमें ले लो, हम लोगों की भी अनुभूतियां हैं, क्योंकि कुछ कर रहे हैं ना, देख रहे हैं, सब लोग सब पाप से झूठ से जा रहे हैं, हम लोग नाम के प्रभाव से
घर में रहते थे, कुछ पता ही नहीं चलता।
पापों को दूर करने वाला एक, और सब सुखों को देने वाला ये दूसरा, ये चंद्र का ये कारण, चंद्र के गुण है, क्या करता है चंद्र, माने विधु हुए दो, एक मूल चंद्र कृष्ण चंद्र और दूसरे चंद्र हुए अंधकार को दूर करने वाला। और एक आदमी को बहुत ये सूर्य से ताप, अभी दिन आज बड़ी गर्मी है ना, और पूर्ण चंद्र उदय है और शीतल ऊपर रात में हवा थोड़ी थोड़ी धीरे मंद मंद बह रही और ऊपर छत पर सो जाओ, चंद्र उदित होने पर कैसे आराम मिलेगा। बिजली का पंखा और ये सब उतना आनंददायक नहीं होगा जितना चंद्र। दूसरी तो इसके लिए करें, ये पहले बात कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र क्या करते हैं, अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसामृत की मूर्ति। और चंद्र क्या है, वो भी अमृत की मूर्ति है। एक समय देवता लोग ब्रह्मर्षि लोग चंद्र की उपासना कर रहे हैं। आप समस्त रसों के प्रदाता हैं, जितनी औषधियां विश्व में होती हैं सब में औषधियों में अमृत भरने वाले आप हैं। आप ही सब चीजों को ठंडा करने वाले हैं, शीतल करने वाले हैं। इसलिए हम आपकी सोम रस से सोम की उपासना कर रहे हैं। सोम रस क्या है, देवराओं का कोई पेयान करने का पेय, उसे आपकी हम सोम की माने चंद्र की उपासना कर रहे हैं। वही जड़ी बूटियों में सब में ये सब चीजें देते हैं, अमृत देते हैं। अब ये तो चंद्र में एक अमृत देने का गुण, क्योंकि वो अमृत रस में है इसलिए देते हैं।
प्राणों का संचार
भी करते हैं इसलिए चंद्र। और दूसरा क्या, सुख एक क्लेश को दूर करने वाले और सुख को देते। कृष्ण में क्या है, जगत में जितने प्रकार के ताप हैं, दुख हैं, सबको दूर करने वाले और अंत में अपने रूप के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा समस्त जीवों को आनंदित करने वाले वो मूल विग्रह हैं। इसलिए विधुर कौन जय हो, कृष्ण चंद्र, चंद्रमा का उपलक्षण में केवल कहा गया, केवल उपमा है। अब वो कैसे हैं इसके लिए अखिल रसामृत मूर्ति, कृष्ण चित अखिल रसामृत की, अखिल रसों के विषय भी है और पीछे से बतलाया एक आस्वाद्य भी है
और
आस्वादक भी है, दोनों भी हैं, दोनों पर से एक परम करुण है और दूसरे
रसिक।
कृष्ण को जब भी रसमय और क्या है वो रस, राधा और कृष्ण दोनों मिलकर
रसराज
महाराज और महाभारत, तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि राधिका के साथ पक्ष में जुट रहे थे। इसलिए महाभाव स्वरूप भी आ गए और रसराज भी आ गए। परम करुण है इसलिए जगत में अवतीर्ण होकर के जीवों को ये सब चीजें देते हैं, अनुभूति करा रहे। और रसिक है इसलिए भक्तों को आनंद देते हैं और आस्वादन भी करते हैं, राधा भाव आस्वादन करते हैं। और कृपालु ने इसलिए अनर्पित प्रेम को ये देते हैं। तो अखिल रसामृत मूर्ति वह प्रश्न और रुचिरुद्ध कारका पाद, तीन प्रकार के लोग या तीन प्रकार की गोपियां हैं, एक साधारणी, एक विशेष मुख्य और एक सर्वाराध्य सबसे श्रेष्ठ। तीन प्रकार इसमें राधिका जी सबके श्रेष्ठ है, ललिता प्रभृति जो है अष्ट शक्तियां ये प्रधान है, और साधारणी और कोटि कोटि कोटि। अब ये तीनों के लिए कर रहे हैं अलग अलग। ऐसे कृष्णचंद जी रसामृत मूर्ति वाले हैं, परम सुंदर हैं, मनमत हैं कि प्रसिमर माने क्या होता है, व्याप्त होने, जैसे हवा धीरे धीरे चलते ही चारों जगत में ये व्याप्त है। ऐसे कृष्ण की रुचि माने
कांति सौंदर्य
गुण इत्यादि उनका ये उनकी प्रभा ये फैल करके क्या करती है, रुद्ध तारका पादी
सबको भस्मित कर दिया।
रुद्ध माने बसी भूतता है, बस रोक लेती है, ठहर जाओ, मैंने बसी भूत कर लेती। इनको तार का पानी, गोपियों के पाली को, पाली मैंने समूह, उनके समुदाय को, समस्त गोपियों को, साधारण गोपियों को स्तंभित कर देते हैं, बसी भूत कर देते हैं। अथवा इनमें प्रमुखा है तारका और फल, उनको रूपकर्म ने ऐसी साधारण गोपियों को रूप में किया। चंद्र के पक्ष में क्या होगा, रुचि रुद्ध तारका, तारका माने तारकाश और पाली माने समस्त तारकाओं को, अर्थात नक्षत्रों को, तारिकाओं को एकदम, विशेष करके बैशाख के महीने में, बैशाख होता है वैशाख, इसलिए कहा जाता है जब विशाखा नक्षत्र के एकदम निकट में उसके ऊपर में चंद्र आ जाते हैं तो उसको कहते हैं वैशाख। इसी तरह से सब में है, बारह महीने में बारह विशेष ग्रहों के निकट में चंद्र आने पर उनका नाम वैशाखी रखा जाता
है,
महीने का नाम वैशाखी। तो ये वैशाख महीने में आते हैं तो सबसे कम दूरी पर विशाखा के पास में पहुंचे, और ऐसा कभी भी किसी भी बारह महीने में किसी के निकट नहीं जाते, इसलिए विशाखा के ऊपर सक्षम है। किंतु चंद्र समस्त साथ ये ताराओं के बीच में रहते, यदि रात न हो और अंधकार न हो तो तारा सब दिखेंगे, नक्षत्र मंडल भी दिखेगी नहीं, किंतु जब अंधकार थोड़ा रहता है तब चंद्र के उद्दीपन साफ दिखते हैं, उनको पकड़ के रखते हैं। इसलिए तारका पाली आप किलित श्यामा ललित कवि, यहां पर किलित लिखी है कलित श्यामा ललित, कलित माने क्या, आत्मसात कर, आत्मसात माने क्या, अपना वियत्व हेतु एकदम अपना लिया है, इसलिए यहां पर श्यामा और सुरभित और ललिता में
स्वपक्ष
और सुरभित पक्ष, उनकी जो प्रधाना है उन दोनों को आत्मसात बड़े प्रेम से, किस लिए, हमको जो प्रधाना उसे मिला देगी, इसलिए बिना इनके कृष्ण उनसे मिल नहीं सकते, इसलिए कभी। अच्छा चंद्र के पक्ष में क्या हुआ, श्यामा रात का जो विलास होता है, चंद्र अंधकार जब भी हो जाए अमावस्या तो उस समय चंद्र खो भी हो तो उस समय में ये सब ताकाएं दिखी जाए, उस समय में रात्रि का विलास है, ताराओं का नक्षत्र मंडल, एक सुंदर सी नीली साड़ी और उसमें स्वर्ण से बिंदु सब बनाए गए और एक एक चमक रहे हैं, उसमें छोटा सा एक जो चमकता है वो भी रात में कैसा लगता है, जग 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 करता है, जो चंद्र को और शोभा को बढ़ाने वाले ये सब हैं, चंद्र उनको श्यामा माने रात्रि का, श्यामा रात्रि का, और ललितो माने ललित माने शोभा, उनके शोभा को विस्तार करने वाला ये चंद्र है। और कृष्ण के पक्ष में क्या होगा वो बतलाया, ललिता और श्यामला राधा प्रयाण, और राधा के जो प्रिय हैं प्रयाण, राधा के अत्यंत प्रिय। अच्छा वहां पर राधा का अर्थ क्या होगा चंद्र पक्ष में,
अनुराधा,
राधा नाम विशाखा का अनुराधा है, राधा के समस्त गुण विशाखा में, इसलिए उनको अनुराधा भी कहते और राधा नक्षत्र भी कहते, तो ये राधा नाम विशाखा का, इसलिए वैशाख महीने में जब निकट आते हैं तो उनके निकट अर्थात राधा के निकट में रखते हैं, इसलिए चंद्र के पक्ष में जो होता है। तात्पर्य क्या, किस तरह से समस्त गोपियों को आकर्षण करने वाले हैं, उसी प्रकार से समस्त जीव जितने भी जंगम आवर पुरुष ज्योतिष सबके चित्त को आकर्षण करने वाले हैं ये कृष्ण, किंतु कौन, जब हम योग्य होंगे ऐसे तब, जैसे एक रोगी है उसको हो गया है कमला रोग,
जंडीस
या रोग जॉन्डिस। जंडिस वाले लोगों को मिश्री या कोई भी मीठी चीज मीठी नहीं लगती,
कैसी लगवा
लगेगा कड़वी लगती, और उसको पीला ही सब कुछ, सफेद भी लाल भी नीला भी सब उसको, यहां तक कि उसका शरीर जिससे लग जाएगा ना तो वो पीला हो जाएगा,
पेशाब करेगा पीला,
उसका सब कुछ जितना है वो सब पीला हो जाता है, ये पीलिया रोग। अभी हम लोग पीलिया रोग के मारे सब लोग विश्व के सब लोग, इनमें से कुछ लोगों का पीलिया रोग अच्छा हो रहा है मिश्री का स्वादन करने, और जो लोग कृष्ण नाम कृष्ण लीला चरित्र कथा इत्यादि का सेवन नहीं करते उनका पीलिया रोग और बढ़ जाए, यहां तक ही एक दिन वो
राम नाम सत्य
वो अच्छा, इसलिए यहां कह रहे हैं किस विषय में लेकर
राधा प्यार विदुर जय,
उनको अच्छा नहीं लगेगा जिनको विद्या का नशा चढ़ा हुआ है, रोग है पीलिया रोग, उनको मिस्त्री मीठी नहीं लगती। ऐसे ही ये भगवान का नाम अत्यंत सुंदर होने पर भी, मीठा होने पर भी कंस को और जरासंध को,
शिशुपाल
शिशुपाल दंत वक्र और प्रभात के पिता हिरण्यकश को इत्यादि को मीठी नहीं बड़ी कड़वी लगती है, और भक्तों को बड़ी मीठी लगती है नारद इत्यादि,
नारद नहीं बाजा
गया बिना आराधिका, इनके लिए बड़ा हम लोगों को अभी जो थोड़े से अब भजन करने लगे हैं गुरु जी के से लेकर के, उनको तो बड़ी मीठी लगी, और संसार की कोई भी चीज कड़वी लगी, और जिनको ऐसा नहीं है संसार की चीज उनको मीठी लगेगी और ये चीज कड़वी लगेगी, किंतु अंत में उनको पछताना पड़ेगा, इसलिए भगवान नाम भगवत कथा इत्यादि का श्रवण करना ही जीवन का प्रधान और एकमात्र लक्ष्य है, नहीं तो इससे वंचित हो जाने पर हम सबसे वंचित हो जाएंगे, इन कथाओं का रसा स्वादन भी नहीं वंचा
नमो महापतन्याय कृष्ण
काम के लिए जा रहा है, इसके संबंध में भी हम लोगों ने उसके संबंध में हमने क्या क्या काम करते काम के लिए जा सकता थोड़ा सा बताओ कि पश्चिम प्रसाद बापाली परिसर श्यामा ललिता ललिता राधा को राधा प्रयाम इसका ये इसलिए बता है ये अपराधिक नवीन मदन वृंदावन में और वो सत्य चित्त को आपर्षित करने वाले यहां तक कि अपने को भी आकर्षित करते इसलिए ये श्लोक में तारका काली श्याम आलिता और श्रीमती राधिका जी को भी आकर्षित अपने रूप से सौंदर्य से गुण से ये करते हैं इसलिए सबकी आकर्षक साक्षात मनमत मनमत के लिए इसका इसकी व्याख्या की श्रृंगार रस राजमय मूर्ति का कृष्ण कहते हैं श्रृंगार श्रृंगार में क्या श्रृंगार में सिंह जो रसों में सिंह के ऊपर में सबसे श्रेष्ठ ऊपर में उनका स्थान विराजमान रस राज रसों के राजा हैं कृष्ण रसों में ये बारह रस जो हैं गौ और उन सबके राजा ये कहां पर बैठेंगे सबके सिंह पर सबसे उन्नत स्थान पर ये बैठते हैं कौन ये कृष्ण इसलिए श्रृंगार रस राजमय मूर्ति अतएव आत्मपर्यंत तो सर्वचित्त इसलिए सर्वचित्त सबके चित्त को हरण करने वाले हैं यहां तक कि आत्मपर्यंत अपने को भी अपने को अपने देकर के भी उनका चित्त हरण हो जाता है अपने को देकर के अपने ही दुख हो जाते हैं अपने रूप पर दुख हो जाते हैं इसलिए गीत गोविंद में इसका एक प्रमाण भागवत में भी इसके हैं और उसमें भी कहा विश्वेशां अनुरंजन जन आनंद इंदीपन श्रेणी श्याम कोमल उपनयन गई अनंगो उत्सव स्वच्छंदम सुंदरी अभिता प्रत्यंगमानिंदित श्रृंगार सखी मूर्तिमानी मनोमुग्धो बलि क्रीडति ये मिले हैं गीत गोविंद विश्व ईशा अनुरंजने यहां पर अतएव आत्मपर्यंत सर्वचित्त सर्वचित्त कहने से कुछ खटक पटक लग जाता है क्या लगता है सब लोगों के चित्त को हरण करने वाले हैं कि नहीं है किंतु विशेष 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 एक ही रूप में नहीं
जैसे बेणु
इसीलिए कारण है सर्व मैंने
वहां पर तो
इस भाव से जिसके अंदर में है उनको ही चित्त को हरण करना सबका नहीं
इन सब के अंदर ये भाव है हम सबको
और लोगों को अच्छा लग सकता है चित्त को हरण करना मैंने क्या जब चित्त हरण कर लिया तो उसका अपना कुछ रहा नहीं तो वो प्रमत्त हो जाए तो वहां पर पशु थे गायें इत्यादि सब सुन रही बछड़े सुन रहे किंतु उनका चित्त एकदम ऐसे नहीं मिल गया कि वो एकदम पागल हो और कृष्ण के पास में दौड़ करके चले वो गोपियां
कृष्ण की वंशी ध्वनि इत्यादि ये सुन करके सबका चित्त मोहित हो जाता है। ये इसलिए कहा कि जिसमें जो भाव है कृष्ण को देख करके उसी भाव से किंतु आकर्षित, जैसे कृष्ण में सब रस है ना, मधुर में सब रस है, शांत दास सत्य बात्सल्य इत्यादि सभी, तो गोपियों में तो सब है, गोपियां आकर्षित हैं। और कृष्ण में भी सब रस है, वो सब रस के आस्वादक आस्वाद्य है और सबके आस्वादक भी,
विषय आश्रय हुए,
विषय भी है कुछ रूप में कुछ में, तो विषय के रूप में एक ही कृष्ण को देख करके विभिन्न लोगों का कृष्ण के प्रति विभिन्न भाव पैदा, एक रूप में नहीं होगा। कह रहे हैं कोई पुत्र के रूप में, कहीं सखा के रूप में, कभी दास प्रभु के रूप में, कहीं प्रिय, विभिन्न विभिन्न रूपों में सबको इतर हो सकते हैं, किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं गोपियों जैसे सबके इतर नहीं, जिनमें यह भाव होगा उसी को, उसी के लिए ऐसा सब चित्तहर होंगे, दूसरों के लिए नहीं। जशोदा मैया सुन करके या और सब गोपियां हैं जो मातृभाव भाव या सखा हैं या दास हैं, ये सब सुनेंगे, या वृद्ध भाव वाले जो हैं कंस इत्यादि, उनको कैसा होगा, उनके चित्त को हरण होगा नहीं। इसलिए जिसमें जैसा भाव है उसके अनुरूप ही सबको एक समान नहीं होगा। इसलिए सबसे अधिक चित्त हरण होता है उन गोपियों का जो उस भाव वाली है, मधुर भाव वाली, उन्हीं को आकर्षण कर ऐसा करेंगे चित्त, जैसे कि वो सब छोड़ छाड़ करके कृष्ण के समीप आए। इसलिए कृष्ण का नाम भी मधुर है, कृष्ण की कथा भी मधुर है, किंतु किसी को अच्छी लगती है तो, किसी को कम अच्छी लगती है, किसी को सुभाती नहीं है, किसी में ममता और रुचि नहीं होती है, और किसी को देख करके क्रोध आ जाता है, ऐसा सब भावों के ऊपर में निर्भर करता है। तो यहां पर सर्वचित्त हरण ये बताया, जो ऐसी गोपियां जिनके हृदय में ऐसे भाव हैं, ऐसे सब गोपियों को ही उन्होंने आकर्षित किया, क्योंकि श्रृंगार रस के संबंध में कर रहे हैं। सबसे याद रखना चाहिए श्रृंगार रस राजमय मुक्ति धर, अतएव आत्म पर्यंत अपने को भी जब वो श्रृंगार रस के उपयुक्त मूर्ति धारण करते हैं अपने को भी आकर्षित कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, राधिका ईव, जैसे राधिका को कृष्ण रूप आस्वादन करने की लालसा होती है, ऐसे कृष्ण को भी स्वयं राधिका बन करके उस रूप को दर्शन करने की या आस्वादन करने की इच्छा। ऐसे ही सब माने यहां पर क्या उस भाव वाले, नहीं तो सभी लोगों को उसी रूप में हो जाता है, सखाओं को भी, माताओं को भी, सबको हो जाता है, ऐसा नहीं। विश्व एक अनुरंजन, विश्व एक शाम मैने ऐसा मैने गोपी, विश्व माने सर्व, विश्व माने विश्व माने यहां पर विश्व माने भी होता है सर्व,
बहुत से विश्व
विश्व माने सर्वम, जैसे समूह होता है या सब होता है, ऐसा ये जो सब हैं, ये माने गोपियां, अनुरंजन न जनयन नानंद इंद्रीवर, अनुरंजन न अनुराग के द्वारा रंजन करके, अनुराग से लेकर के महाभाव इत्यादि सब, उसके द्वारा अपने रूप के द्वारा सबके अंदर में अनुरंजन करते हैं, अनुरंजन का नाम है अनुरंजन, अपने भावों से, अपने प्राप्ति कराने के भाव से सबको एकदम उसके हृदय को एकदम रंग देते हैं। जैन आनंद और उनके हृदय में आनंद उत्पन्न कर देते हैं, आनंद उल्लास यहां उत्पन्न कर उत्कंठा जाकर कर देते हैं। इसके द्वारा श्यामल कोमलान कोमलई रूपानयनम अंगई अनंगो उत्सव, वे अपने अत्यंत श्यामल और कोमल अंगों के भावों को उत्पन्न करके उनके अंदर में आनंद और फिर आनंद के द्वारा उनके चित्त को अनुरंजन करके अनंग उत्सव प्रस्तुत कर देते। स्वच्छंदम ब्रजसुंदरी भी अभी तक पत्यंग मालिंगिक स्वच्छंदम, स्वच्छंदम मैंने शांत दासक बासल लतक जितने भी बाधाएं जितनी भी बाधाएं हैं उन सब बाधाओं को पाकर स्वच्छंद रूप से जैसे गोपियां कृष्ण के साथ मिली ऐसे स्वच्छंद रूप से कृष्ण से मिलकर अब कोई भी अंदर में बाधा विघ्न इत्यादि समाज कुल जाति अथवा अंग संबंधी या कोई भी अब बाधा नहीं रही, इसलिए इन सब को दूर करके सब प्रकार से प्रत्यंग मालिंगित कृष्ण को अपने समस्त अंगों के द्वारा समस्त अंगों को अलिंगित करके मूर्तिमान एकदम मूर्तिमान जो श्रृंगार के स्वरूप कृष्ण हैं, हे सखी ये हरि मुग्धो महौ मुग्धो हरि कृत, ऐसे जो हरि मुग्ध होकर के स्वयं स्वयं ही मुग्ध हो रहे हैं, मुग्ध होकर के मधु ये पसंद करी तुम्हें क्रीड़ती क्रीड़ा कर रहे हैं। यहां पर मुग्ध शब्द के लिए कहा कि अपने भी उसमें मुग्ध हो जाते हैं और की तो बात है गोपियां तो मुग्ध हो ही जाती हैं, अपने आप भी उस रूप को देकर के मुग्ध हो जाते हैं। लक्ष्मी कांता अवतारे हरे मो इनका यह श्रृंगार का रूप ऐसा है और की तो बात क्या लक्ष्मी कांत जो नारायण आदि आदि मैंने वहां से आरंभ करके और नीचे पर्यंत जितने भी तत्व वैभव अवतार हैं ये विष्णु तत्व हैं या भगवत तत्व हैं, उन भगवत तत्वों का सबका ही आकर्षण उसमें करते वो सभी लोग कृष्ण के रूप को देकर के मन करते, इसमें बलदेव प्रभु भी और चार वासुदेव संकर्षण प्रतिम अनुरूप इत्यादि भी संकर्षण ये सभी और वहां से लेकर के नारायण और नीचे वाले जितने हैं सब जितने भी भगवत करते हैं और फिर लक्ष्मी आदि उनकी जो लक्ष्मियां हैं नारी बनों को भी आकर्षण करते हैं ये कृष्ण का साथ। इसके लिए श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 89 अध्याय से एक श्लोक बतला है कृष्ण के से महासंकर्षण मूल संकर्षण, मूल संकर्षण से महासंकर्षण और उनसे नारायण है कृष्ण वहां पर वासुदेव है वासुदेव श्री नारायण उनका वैभव प्रकार और बाद में कर्णाधिशाही। अब ये कर्णाधिशाही विष्णु ही भूमा पुरुष है, यही भूमा पुरुष महाकालपुर में रहते हैं, भयानक लगता है किंतु भयानक नहीं, किंतु भयानक नृसिंह जी को देखने सुनने से होता है बहुत भयानक किंतु बड़े कोमल इनके लिए भयानक दोस्तों के लिए हैं, ऐसे ये महाकाल पूरम के लिए हैं। समुद्र लहरा आ रहा है मां, और उसमें अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, और उसके बीचों में
कृष्ण का भजन करने वाले ये भयानक स्वरूप जो है, ये ऋषि जी के
भयानक वस्तुओं के अंदर में वो है ना,
तो इससे भजन में कोई बाधा नहीं है।
वहां पर भजन का क्या, भजन करने वाले भजने जाएंगे
उनका जो मंत्र जब करते हैं
उनका, वो ब्रह्मांड इत्यादि जैसे लोग हैं उनका तो हम लोग इसलिए जपते हैं कि हमारे विघ्न बाधाएं बस इतना है, जो जितने अशुभ लोग हैं उनको देख करके डर है, विघ्न बाधा भी डर है हम लोग इसलिए, उनका भजन उपासना करके उनको पाने के लिए नहीं, हम लोग को बस इतना है। यहां पर एक लक्ष्मीकांत इत्यादि के लिए और उनकी लक्ष्मियों के लिए हर चित्त हरण करते हैं ये कृष्ण, उसके लिए यह करना भगवान को शक्तिमान पुरुष रूप है, तो पुरुषों का पुरुषों के प्रति ऐसा रूप देख करके उनका भी चित्त आकर्षित हो जाता है, ये आश्चर्य की बात, किंतु ये ऐसा हो जाता है। कृष्ण की भी इच्छा होती है अपने रूप को देखकर कि मैं स्त्री बनकर गोपी बनकर के राधिका के समान इस रूप का स्थापन, कृष्ण को खुद हो जाता तो उनके अवतारों का क्यों नहीं होगा, इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये सब बातें ये सब होने के पहले चैतन्य चैतन्य से पहले कहीं थी, हो सकता है गोस्वामी के ग्रंथों में कहीं हो रूप गोस्वामी अथवा गोस्वामी इत्यादि के ग्रंथों में जरूर होगा, अपना दास को स्वामी से उन्होंने कहा, किंतु इस रूप में स्पष्ट रूप में इस तरह से अब उसी को शास्त्रों से प्रमाण देकर के बतला रहे किस प्रकार से कृष्ण का रूप कौन रूप
ब्रजनंदन
श्रृंगार। कुछ लोग कहते हैं जो गोलोक में वृंदावन में गोलोक वृंदावन में गोकुल में कृष्ण का जन्म नहीं होता, बोलो और गोकुल उनका जन्म नहीं,
जन्म केवल इसी लोग
केवल वहां अभिमान के रूप में होता है, जैसे कृष्ण हमारे पुत्र बस। कुछ लोग कहते हैं वहां पर पार्थिव भाव है तो इसलिए वहां पर श्रृंगार रस भी नहीं होगा, श्रृंगार रस होगा तो नहीं होगा, इसलिए श्रृंगार रस भी नहीं है, पार्थिव भावना भी नहीं है, श्रृंगार रस भी नहीं है, तो वहां क्या है, है क्या नजर में क्या भाव है, अरे मेरे समय से तो जो वहां लीला है ही नहीं है, वहां पर ये कैसे उतरेगी, उतरती है तो या प्रकटित होती है प्रकाशित होती है, तो वहां जो लीला ही नहीं है तो यहाँ पर कैसे प्रकट हो, इसलिए वहां जो लीला है वहीं पर उसी का ही यहाँ पर प्रतिबिंब हो सकता है या प्रकाश हो सकता है, हमारे गोसाई ने कहा जो वहां लीला है यहीं पर लीला प्रकट और अप्रकट का अंतर है, यहाँ तो यहाँ पर दिखा जाता है वहां पर दिखा नहीं,
संदर्भ में कहा है कि ये वहां ये नहीं है, तीन महीने का ये नहीं, जो माधुर विरह जो विप्रलंब है ये नहीं है, रोज दिन ऐसे ही अनुभव होता है कि आज ही कृष्ण मिले, ऐसे ब्रजवासियों को अनुभव
होता है, किंतु ऐसा नहीं जो है ही नहीं, पर एक न कोई लाखों प्रकोष्ठ हो सकते हैं, अनंत प्रकाश हो सकते हैं, एक प्रकोष्ठ में ये भी होगा
क्योंकि नित्य प्रकाश है,
श्रृंगारी दर्श नहीं होगा तो फिर होगा क्या, जैसे जरूर होगा उनका जन्म भी है,
इधर जैसे जन्म ऐसे जन्म है, जन्म का भाव है उधर ने दिखाया,
अब वहाँ पर जाएंगे तो विशेष रूप से बताया,
आपने पहले बताया था जन्म का भाव
है, नहीं तो उसकी छाया यहाँ पर नहीं
है, आपने पहले बताया जन्म का भाव है, आपने देख करके बताइए,
अच्छा द्विजात्मजा मैं युवयो दिदिक्षुना मयोपनीता भूमिधर्म गुप्त कलावतीर्णा अवने भरासुरा सत्वेह भूयस्वरे मंत्री में द्विजात्मजा में युवयो दिदिक्षुना ये बात है कभी द्वारकापुरी में जब कृष्ण थे बलदेव प्रद्युम्न अनुरुद्ध इत्यादि थे तो अंतिम समय में जब कृष्ण को अब जाने का अप्रकट लीला करने का हुआ उसके कुछ दिन पहले एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी उसको लड़का होता था उत्पन्न संतान और साथ ही साथ में वो संतान मर जाती तो ऐसे ही उसके एक दो तीन चार पांच लड़के हुए वो मर गए तो वो ब्राह्मण प्रत्येक मरने के बाद में बच्चे को लेकर सौ उसका लेकर तो शरीर और राज दरबार में आ जाता और वहां पर पता जी या राजा के पाप से हमारे लड़के मर
अकाल मृत्यु
ये राजा लोग पाप करते हैं और भोग करना पड़ता है प्रजाओं को और कुछ गाली गलौज करके निंदा इत्यादि करके चला वहीं पर छोड़ दिया। ऐसे कुछ दिन करने के बाद में एक दिन फिर लड़का उसका जन्मा और फिर उम्र वो वहां आकर के और विलाप करने लगा विलाप करके कृष्ण को बलदेव को भिन्न अनुद्ध सबको अजय ये सभी पापी हैं ऐसे इन्हीं के पाप से ही ये हमारा कैसे लड़ा ये कहूंगे अर्जुन वहां पर थे उनको पता लगा अर्जुन आकर के कहा सांत्वना दिए जिसे आप विलाप मत कीजिए और उनको दोष मत दीजिए आपका लड़का इस बार होगा जब होने को होगा जब आप अपनी माता के गर्भ में आएगा उसमें मुझे सूचित करें और मैं ऐसा उपाय कर दूंगा जो लड़का मरेगा जब बड़ा बचाने वाला आ गया स्वयं कृष्ण नहीं बचा सके प्रद्युम्न जी अनिरुद्ध जी संकर्षण बलदेव ही नहीं बचा सके और तुम बचा लेगा जा जो अपने काम में जाओ यहां मत आना हमारे पास हमने बहुत लोगों को देख उनको झटक दिया उन्होंने कहा ये नहीं तुम ऐसा मत करो मैं प्रतिज्ञा करता हूं यदि तुम्हारे बच्चे को मैं नहीं बचा दिया तो मैं आदमी चलता से मत जाऊंगा उन्होंने कहा जैसे ठीक है मैं जा रहा हूं और यदि होगा समय तो तुमको बताऊंगा तुम देख ये सब चला गया और समय पर जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो अर्जुन को खबर दी कि हमारी पत्नी को बच्चा होने वाला है तो वो आए और आकर के उसी लिए द्वारका में ठहर गए थे और जिस घर में शौरी गई था मैं जहां पर बच्चा होने वाला शौरी के पहले शौरी गृह करते थे अब तो शौरी गृह अस्पताल में और कहां कहां होता
है प्रसूति गृह लिखा रहता
हाँ प्रसूति गृह पहले होता था तो प्रसूति गृह में वो थी और वहीं से अपने बाण से ऐसा बनाया जिसमें हवा भी प्रवेश करके उसके भीतर बनाया जा सके और खुद धनुष बाण लेकर के वहां पर पारा देने लगे दिन रात ठीक समय पर बच्चा पैदा हुआ और खून आंख तैयार होया और रो करके बस शरीर ही नजरे कहां चला गया और बार बार तो बच्चे रह जाते थे दिखाई पड़ते थे मरे भी इस बार दिखाई नहीं दिया और शरीर ही होगा कहने कहां चला ब्राह्मण देखकर के अर्जुन को और उनकी बड़ी निंदा करने का बड़ा अनुखर हुआ और वो गांधी को दूसरे टोटे प्रसाद अपनी बल की डीग मारता है काम आने पर कुछ भी काम नहीं होता है सारी कृष्ण बलदेव भी नहीं रक्षा कर सके और वो सब नहीं रखते सारी जगहों की बड़ी सारी सभा विशाल वो नहीं रक्षा कर सके तुम क्या रक्षा करेगा
जाओ चूड़ी उड़ी पहन करके घर में बैठे ऐसे ऐसे बात है कहा। तो अर्जुन ने देखा जी तीन छठी अच्छा मैं देखता हूं ये कहां गया, इसने पृथ्वी की जहां तहां हो सकता है वो सब देखा। इसके बाद में जमपुरी गए वहां पर भी देखा, वहां पर भी पता नहीं। फिर इंद्रपुरी इत्यादि जो जो सब जीवों के जाने की जगह है वो सब को देखा, कहीं भी उनको पता नहीं। अंत में मुझाए हुए मन से पृथ्वी लोक में द्वारका में आए और सीता बनाने और सीता बनाकर के धनुष में कृष्ण जल करके मर गए। उस समय कृष्ण बोले कि भाई ऐसे प्रतिज्ञा क्यों करता है, महाभारत में भी तुमने दो एक बार ऐसी प्रतिज्ञा की जयद्रथ को बदल त्यागी कर बड़ी मुश्किल से तुमने बचाया, अब तुमने ऐसी प्रतिज्ञा कर दी जैसे इसलिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा ठीक है अभी मरो मत, चेष्टा तो हम करते हैं, तुम हमारे साथ में चलो। ये सब से दिव्य घोड़े और दिव्य रथ लिया और दिव्य घोड़े लगाकर दिव्य माने क्या जो कि हवा पानी जल वायु आकाश अग्नि इत्यादि से भी अस्तित्व रहते हैं, बिना हवा के भी जीवित जाएंगे, अग्नि में भी नहीं जलेंगे, बिना अग्नि के भी जीवित रहेंगे। हम लोग बिना आग के जीवित रहेंगे कि नहीं, बिना आग के जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, बिना हवा के भी नहीं, बिना पानी के भी नहीं, बिना मट्टी के बिना भी नहीं, बिना आकाश के भी नहीं जीवित रहेंगे, प्रकृति के बिना भी। तो ये सब ऐसी चीज है, ऐसा किया कि इनकी कोई भी हेल्प लेना पड़े अर्थात अपराध कोई औरत भी प्रकाश करते हुए उसे भी आगे बढ़े बढ़कर के कहां पहुंचे
महाकालपुरम
को भी पार करके कर्णाब्दिशाही कर्णाब्दी समुद्र में वहां पर जहां विष्णु रहते हैं महाकाल जिनका नाम है सहस्त्र शीर्षा जिनका नाम है ब्रह्माचारी के जो उपास्य गर्भोदशाई हैं उनके भी मूल हैं। वहां पर पहुंचे उनको देख करके उन लोगों ने वहां पर जो विष्णु थे भगवान नारायण इनका बड़ा आदर किया, इनके अंश हैं कृष्ण के, इसलिए उन्होंने गद्दी छोड़ दी और कृष्ण को वहां पर और अर्जुन को बिठा करके बढ़ा दिया। कैसे आप लोग पधारे तो हम लोग इसलिए पधारे। उन्होंने कहा जैसे बच्चे वो सब यहीं पर हैं, मैं केवल आप लोगों के दर्शनों के लिए ही इनको लाया था,
जाकर दर्शन कर लेते हैं।
द्वारका में जाने से दर्शन नहीं होता, द्वारका उसे बहुत ऊंची है, उसके ऊपर बैकुंठ लोग बैकुंठ से ऊपर
उनके विष्णु द्वारका नहीं जा सकते हैं।
नहीं नहीं उसके लिए दर्शन वहां जाएंगे तो द्वारका भी सो जाएंगे,
ब्राह्मण की तो द्वारका
उनका जाना है इनका जाना है, तो बहुत ऊपर की चीज है द्वारका उनकी, उनका यही अंश ही यहां पर रहेगा। और द्वारकापुर में आएंगे तो जैसे ब्रह्मा जी गए देखा जो लाखों कोटि ब्रह्मा वहां पर इकट्ठे हैं और इनको भीड़ में भीतर पहुंचने की इनको जगह ही नहीं मिली, वंदना करने के लिए भी इनको अवकाश नहीं मिला, ऐसे हो सकता था कि इनके लिए
कारण से विष्णु तो एक है ब्रह्मा बहुत है कारण से विष्णु बहुत किरीट कोटि तो पाद
हो सकता है कि कोई ऐसा आश्चर्य प्रकाश कर दें वो नहीं इस क्योंकि वो लीला कारण है, इसलिए वो हमारे यहाँ आएंगे दर्शन देंगे। होगी कोई बात ऐसी द्विजात्म जात मई जीवयोदित सुना मया को नीतो भू धर्म गुप्त ये जो द्विजों की जो आत्मा है बच्चों की मैं
आपके इस रूप को दोनों को देखने के लिए युवयों में अर्जुन और फिर नर और नारायण के रूप में कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए मैं देखने के लिए ही मैं दिदिक्षु तो दिदिक्षुना मैंने इच्छा से अभिलाषा से
देखने की इच्छा
मैं आपके इन सब बच्चों को यहाँ पर ले आया हूँ भूमि अपने धाम में ले आया बच्चों को। अब धर्मगुप्त फलाप फिल्म आप जो दोनों हैं धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म की प्रतिष्ठा के लिए कलावतीर्ण मैंने कला के रूप में या कला के साथ में कला के रूप में आप आए हैं मेरे कला हैं मैं अंशी हूँ हमारे कला के रूप में ऐसा अर्थ नहीं होगा किंतु साधारण लोग ऐसा ही अर्थ मैं इसलिए ले आया था ये आप मेरे कला हैं कला के रूप में हो ऐसा नहीं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पहले पहले ने दूसरे श्लोक में क्या अंशेन सह अंशेन सा और अंशेन सा मैंने अंश के सहित मैं आया ऐसे ही समस्त कलाओं के साथ में तत्व समस्त जितने भी श्लोक तत्व हैं सब शक्तिमान तत्व के सहित आप अवतीर्ण में धर्म की रक्षा करें धर्म की रक्षा मैंने क्या कलजी का धर्म नाम संकीर्तन इत्यादि की रक्षा के लिए दूसरों का संहार करके धर्म की प्रतिष्ठा के लिए और ये जो मुक्त पुरुष हैं उनके क्या क्या धर्म हैं उसकी भी रक्षा के लिए उन चीजों को देने के लिए यहां तक कि गोपी प्रेम तक ऊपर में पहुंच जाएंगे ये सब धर्म गुप्त के अंतर्गत है। आप अवतीर्ण हुए हैं अवतीर्ण हुए हरासुरान हकवाई भूरस परेत परेतम अर्थात जल्दी से आप भूमि का भार हरण कर और असुरों का संहार कर उनको जल्दी से मेरे पास में भेजिए ये नहीं कहा जैसे आप आ जाइए जल्दी से भूमि का भार हरण करके उन असुरों को भेजिए मेरे मुक्ति के लिए
मेरे
कारागारम है ना
कारागार
उसमें कौन सी मुक्ति ये अनु असुरों को इसलिए फरासुदान असुरों का भार हरण करके उनको भेजिए जिससे कि वो हमारे में
हमारे दिल का नहीं
तो यहाँ पर ये बताया मैं तुम्हें दर्शन करने के लिए दर्शन करने के लिए मैंने आप लोगों के इतने सुंदर चारू दर्शन है उसको दर्शन करने के लिए मैं दर्शन किया इसलिए भगवत तत्वों का भी चित्त आकर्षण करने वाली उनका है जब द्वारकाधीश को ला रहे हैं तो सिंगारस वाले कृष्ण की तो बात ही क्या है वो तो द्वारकाधीश वाले को ला रहे हैं तो उनका तो रूप कितना था फिर दूसरा एक और उदाहरण दे रहे हैं यहां दिया शक्तिमान तत्व के लिए अब यहां दे रहे हैं लक्ष्मी आदि लक्ष्मीकांत आदि का ये दिया और यहां देंगे अब लक्ष्मी आदि नारियों के लिए आकर्षण किया कश्यानुभावो अश्रम देव विस्महे सर्वांगृदेनो स्पर्शाधिकार जद पंचयापो विहाय कामानुसुचिरं धृतव्रता कस्यानुभावो अश्रम देव विस्महे जब नाग पत्नियां अपने पति की रक्षा के लिए कार्य दमन कृष्ण से प्रार्थना करनी तब प्रार्थना किया अब तक शांत बैठी हुई सोच रही थी कि हम लोग विधवा हो जाए ये भगवान का विरोध कर रहा है कृष्ण का इतना शो कोमल और उसमें ये काट रहा है वहां गले में हृदय में, जिसे अभी तुरंत मर गए, ये प्रभारी निष्ठुर है, इसका मर जाना ही अच्छा। कृष्ण का विरोधियों का जगत मराना अच्छा है, इसलिए मर जाना दुखवा जाए। थोड़ी देर के बाद में कृष्ण के प्रभाव को देख करके जो सोचा, ओ गरुड़ हमारा कुछ भी न कर सके, किंतु ये गरुड़ से भी बड़े दुर्धर्ष हैं, आज इनके पैरों की तात्क्षणिक भी भार में सहन करने में असमर्थ हूं, ये है कौन? कहीं हमारी पत्नियां हमको उचित सलाह देती थी, इनसे विरोध न करो, कोई वही विष्णु तो नहीं है? आप समझा तो वो नारायण का शरणागत होकर के प्रभु मेरी रक्षा करे, इस प्रकार से कहा। नाग पत्नियों ने देखा जिसका भाव बदल गया,
शरणागत हो
गया, शरणागत हो गया, ठीक। तब वो प्रभु से प्रार्थना, कृष्ण के लिए प्रार्थना, ओ प्रभु आप इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं छोड़ने से इसको मार देने से हम विधवा हो जाएंगे, इसलिए आप कृपा करके इसको जीवन दान कीजिए। हम तो देखती हैं, ये कह रही हैं, कश्यानुभाव अस्तन देवित है, हम लोग ये इस निर्णय नहीं कर पा रही हैं कि इनके चरण कमल, आपके चरण कमलों की धूलि को पाने के लिए लक्ष्मी स्वयं इसके लिए तपस्या करती हैं लालसा के लिए, और इसको ये अपने आप आ गया, ये चाहता है कि इनके चरणों को उतार करके फेंक दें, और आप इतने दयालु अपने चरणों की धूलि इसके केवल एक सिरी पर नहीं, इसके जितने भी शरीर हैं सर्वत्र ही हमारे चरणों की धूलि, जिस चरणों की धूलि के स्पर्श के लिए ब्रह्मा और शंकर की तो बात ही क्या, ये स्वयं लक्ष्मी देवी भी प्रांगणु स्पर्शाधिकार उनको नहीं मिली, और इसको अधिकार मिल गया इस विषय के, और नहीं चाहने पर भी जोर जबरदस्ती दिया जा रहा है, न जाने कौन कौन ये पूर्व जन्म में तपस्या की थी अथवा क्या किया था, हम नहीं जानते, तस्या अनुभव अश्वन देव, हम नहीं जानते हैं कि इसका कैसे, इसका भगवान की चरण भूमि को स्पर्श करने के लिए इसको अधिकार मिल गया, भगवान का ऐसे चरण भूमि को पाने के लिए तपस्या से होगा, कोई तपस्या से नहीं, साधारण साधन भजन से नहीं, ये तो भगवान की है कि कृपा है, न जाने कैसे हो गया, यदि हो गया होगा तो बस उनकी पत्नियों की कुछ ऊपर में भगवान की कृपा होगी इसलिए होगा, अन्यथा ये होना असंभव, उसी के लिए वो कार्य जदवांछा श्री लंगाचरो कपे, श्री मैंने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी सब समय भगवान नारायण की सेवा करते हैं, किंतु उनके अंदर में भी ये वंशा हुई, कैसे हुई, कैसे उनको हुई, एक तो सर्वांतर्यामी है इसलिए भी हो सकता है, अथवा नारद इत्यादि जी के कहने से हुआ होगा, जैसे रुक्मिणी इत्यादि को बतलाया नारद जी, ऐसे इन्होंने बतलाया होगा, सुन करके कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए, और वृंदावन में आकर के बेल वन में बहुत तपस्या की उन्होंने किया, जदवांछा जिनकी इच्छा से, किसके लिए, चरण की भूली को स्पर्श करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, वो वृंदावन में बेल वन में आकर के तपस्या की, किंतु कहीं नहीं लिखा कि मिल गए कि नहीं, ये नहीं लिखा, श्री ललना, ललना मैंने क्या, ललना ललना मैंने स्त्री होता है,
अत्यंत सुंदरी स्त्री,
अत्यंत अनुपम सुंदरी, साथ ही साथ में अत्यंत सुकोमल स्निग्ध सुंदर सुगंध युक्त पद्मगंधा, श्री ललना आचार्य तपो कठोर व्रतिया इधर में कोमल अंग उनके, और वो इतना कठोर तपस्या किया किंतु उनको मिली नहीं, और इसको वो चरती धूलि मिल गई। विहाय कामान, कैसे अपनी समस्त कामनाओं को छोड़कर। लक्ष्मी जी ने की क्या कामना हो सकती है? वैकुंठ में जो आते हैं उनमें कोई कामना होती है कि नहीं? सब जगत के समस्त कामनाओं को छोड़कर के एकमात्र प्रभु की सेवा की कामना। लक्ष्मी जी में प्रभु नारायण के चरणों की सेवा करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा? इसको भी उन्होंने छोड़ दिया। विहाय कामना, कैसे कैसे सेवा उसको भी छोड़ दिया, और छोड़ करके यहां पर बैठी हुई है, तपस्या कर रही है। सूचीरम घृत व्रता, बहुत दिनों तक, और घृत व्रता मैंने व्रत मैंने क्या, खाना पीना छोड़ दिया, फल भी नहीं लिया, दूध भी नहीं लिया, पानी भी नहीं लिया, हवा भी छोड़ दिया, ध्रुव जितनी तपस्या किए थे उनसे भी ऊपर, ऐसी कठोर तपस्या उन्होंने की बहुत दिनों तक। नारायण की भी परवाह नहीं की सेवा की, सब वैसी ऐसी कामना भी छोड़ दी, संसारिक तो छोड़ा ही, वो भी कामना तपस्या की। शायद कृष्ण मिले होंगे भी या आए नहीं होंगे, जानते होंगे इनके हृदय की बात, जैसे इनसे होगा नहीं, वो कहेंगे कृष्ण आकर के, अच्छा तुम परमा, जब मैं ब्रज में गोपियां जैसे आपके साथ में नित्य इत्यादि करती हैं, मैं उसी तरह से राष्ट्र में सम्मिलित हूं और आपकी सेवा कर सकूं, मैंने श्रृंगार रूप है ना, इसलिए श्रृंगार रूप में मैं आपकी सेवा कर। कृष्ण कहा जैसे एक बात पर बहुत सीधी सादी सी बात है, तुम गोपी के रूप में जन्म ग्रहण करो और फिर दूसरे गोप से शादी हो जाएगी और फिर वहां मैं रहूंगा, वहां पर हमारे राष्ट्र में सम्मिलित हो जाएंगे। इस बात के लिए वो राजी नहीं, मैं ब्राह्मणी गोपी कैसे बनूं और गोपियों के साथ, गोपों के साथ में हमारी शादी होगी, आपके साथ में शादी होगी, ये तो मुझे मंजूर है, किंतु वो शादी उन लोगों गोपों के साथ में शादी हमको मंजूर, तो उन्होंने कृष्ण ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद में नारायण आए, अरे मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं कितने हजारों वर्षों से और तुम यहां पर बैठी, मना जुना करके कॉस फून करके फिर इस तरह से उनकी इच्छा पूर्ण नहीं। अर्थात लक्ष्मियों को भी कृष्ण के दर्शन की और उनके चरणों की धूलि की उनको आकांक्षा होती है, किंतु यह भी उनके लिए संभव है क्योंकि एक चीज में वो प्रतिष्ठित है। इसीलिए वो ब्राह्मण पत्नी जो मथुरा की थी, यज्ञ पत्नियां, उनको भी इसी कारण से नहीं मिले। तब हां उनके लिए एक आशा है उस जन्म के बाद, उस जन्म में तो नहीं मिले।
अच्छा रासलीला में ये लोग सम्मिलित नहीं थे?
कौन?
ब्राह्मण,
ब्राह्मण पत्नी के रूप में वो नहीं सम्मिलित हो सकते,
जैसे गोपियां गुरुमय शरीर त्याग करके गए तो ये भी ऐसे जाते
नहीं। उन्होंने गुरुमय जो छोड़ दिया, ब्राह्मणियों ने भी जिनको रोक लिया कर, वो कृष्ण से आकर मिल तो गए किंतु राशि इत्यादि में उनकी लीला में सम्मिलित नहीं, क्योंकि उसमें अभी कषाय है। वो जन्मांतर में तपस्या करते 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 भाव आने पर गोपियों का अनुगत में जब भजन करेंगी ना, तब जाकर के फिर दूसरे जन्म में वृंदावन में जन्म होकर के गोपी शरीर में आकर के गोपियों के नित्य सिद्धाओं के साथ में आएंगी और तब फिर उनकी आवता, ऐसे नहीं श्रुतियों ने ऐसा किया, इसलिए श्रुतियों का हो गया।
ब्राह्मणियों को कौन सा कषाय था?
यही तो ब्राह्मण होने का कषाय।
अच्छा,
इसलिए कहते हैं जिसे लक्ष्मीकांत आदि और लक्ष्मीकांत आदि, ये सब लोगों को चित्त को हरण कर लेते हैं कृष्ण अपने रूप से इतना अधिक उस आधार में उनको बात कर
आप पूर्णिमा भुजारे आप नार्मल आप किसको दे आ रहे हैं उन्होंने आत्मपद पर्यंत कहानियों को अब उसके लिए ला रहे अपना माधुर्य आपन माधुर्य हरे आप नार्मल अपना अपन ही चाहे परित्यागी अपना ही अपना देख करके मुग्ध हो जाते हैं और अपने रूप का आस्वादन करना चाहते हैं कृष्ण ये ऐसे कृष्ण ऐसा किसी भी रूप में नहीं है किसी अवतार में नहीं है राम इत्यादि में भी नहीं है द्वारकाधीश में भी नहीं है और विष्णु इत्यादि राम इत्यादि के तो बात ही क्या ये किसी में भी नहीं है इसलिए कृष्ण का यह रूप स्वयं रूप और स्वयं रूप में भी ब्रजेंद्र नंदन होने स्वयं रूप में भी यह श्रृंगार रस राज मय मूर्ति है। अब बतलाए अपने आप कैसे उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है उसके लिए ललित माधव का एक श्लोक यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखिए अपर कलित पूर्व कष्ट चमत्कारकारी प्रतिमम गरियानेश माधुर्य पूर्व अयम अहम अपि हंत प्रेक्ष जा चित्त लुब्ध चेता सरसम काम ए अपरिकलित अपरिकलित मैंने जो पहले कभी अनुभूत नहीं हुआ अपरिकलित कभी अनर्पित शरीर चिराग जैसे है कभी भी नहीं दिया गया यहां पर कभी भी अनुभूति आस्वाद जो नहीं हुआ अपरिकलित पूर्वम कश चमत्कारकारी अत्यंत चमत्कारकारी चमत्कारी किसको कहते हैं जो कभी भी न दिख पड़े अत्यंत सुंदर सुहावना मधुर हो और अद्भुत हो जो चित्त में क्षोभ पैदा कर दे
विस्तारित तो नेत्र से देखे
इसको कहते हैं चमत्कारकारी है? जो कभी भी कृष्ण का रूप ही ऐसा है नौ नौ आयमान जब भी कोई देखेगा तब नित्य रूप देखेगा यह श्रृंगार विशेष पुरति मम गरियानेश माधुर्य पुरति मम कृष्ण कह रहे हैं या रूप देख करके मेरे मन में भी इसकी गरिमा देख करके गरियान एश इतना गरियान माने सबसे श्रेष्ठ यह रूप है माधुर्य में कोमलता में मधुर में सब विषयों में विशेष करके चार रूपों में रूप गुण लीला लीला बेनी माधुरी माधुर्य पूरा माधुर्य पूरा मैंने एक तरल माधुरी है माधुर्य किंतु तरल और एक है घना घना सभी घना घना मैंने पूर को कहते हैं घना माधुर्यपुर माधुर्य का यह पूर है घना भाव आय मापी हंत हंत मैंने
क्यों हंत विस्मय
नहीं उनको बड़ा खेद है किंतु यहां पर है खेद क्यों खेद मैं इसको पाना चाहता था मुझे मिला नहीं इसलिए खेद मैं राधिका की भांति इस रूप को आस्वादन करना चाहता था किंतु मेरे लिए संभव नहीं क्यों क्यों नहीं हुआ राधिका जैसा भाव हमारा अंदर में नहीं है बिना भाव के वो देखा नहीं वो चीज की प्राप्ति नहीं इसलिए करें कि राधिका का यदि भाव होता है हमारे अंदर में तो कहीं संभव हो सकता है उनमें है महाभाव अपना इनमें वैसा नहीं आश्रय जाति महाभाव अपने राधिका जैसा भाव नहीं इसलिए राधिका के भाव के लिए उन्होंने फिर से चैतन्य महापुरुष रूप में आकर के तथ्य विस्तार साधन तो आयम अपनी हंत प्रेक्ष लुब्ध चेता
सरसम उपभोक्तुम कामे राज के सरसम मैंने उत्कंठा के साथ अत्यंत उत्कंठित होकर, और सरसम मैंने केवल उत्कंठा नहीं सभी उत्कंठा हो सकती है, काम युक्त प्रबल उत्कंठा, जिसको उज्जवलीन मणि में काम जो बताया है प्रेम कृष्ण के प्रति वैसा समान कमात्मिका भक्ति ऐसे से युक्त होकर के जो परम उत्कंठा उनसे मिलने की होती है, ऐसे हमारी भी उनकी उत्कंठा है, किंतु मैं उसे पा नहीं सका। कहते हैं जिसे ये अपने लिए कृष्ण भी आशा, इसलिए कृष्ण का यह रूप जो है कृष्ण के समस्त रूपों में यहां तक कि स्वयं रूप में भी बाल्य पौगंड नव्य किशोर मान आदि किशोर अंत किशोर मध्य किशोर इत्यादि ये सब में परम सुंदर वो चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुपत उपाध्याय के यहाँ जो श्लोक सुना था ऐसा उनका श्लोक था
श्यामम एव परम रूपम
श्याम एव श्यामम एव परम रूपम पुरी माधुरी एक तो संखेते पहले कृष्ण है स्वरूप, अब इससे कोई अधिक स्वरूप कृष्ण का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ माधुर्य सौंदर्य जो कुछ था इन्होंने परिपूर्ण रूप से यहां तक कि और की तो बात क्या स्वयं कृष्ण भी इस रूप को देख करके यही तो संख्या पे पहले कृष्ण है रसो। अब ये कृष्ण कौन हुए, पहले तो समस्त सड़ स्पर्ज पूर्ण, दूसरा हुआ सचिद आनंदमय सचित आनंदमय सर्वशक्तिमान है सर्व कारण कारण है और सब रसों के आश्रय और
विषय
विषय और उस पर भी नौ नवायमान चार माधुरियों से युक्त है रूप माधुरी गुण माधुरी लीला और अखिल रसामृत मूर्ति है और सबके चित्त को आकर्षण करने वाले हैं। यहाँ तक कि और भगवानों की तो बात ही क्या है, स्वयं जो भगवान स्वयं कृष्ण है उनके भी चित्त को हरण करने वाला
नवीन मोदन
और उनकी समस्त कांताओं को राधा से आरंभ कर जितनी भी उनकी कांताएं हैं देवलोक तक में भी सबके चित्त को हरण करने
वाला मूर्तिमान सिंगार
और मूर्तिमान सिंगार इत्यादि ये कृष्ण का जीव है। अच्छा बात्सल्य रस के ये विषय होंगे कि नहीं, ये कृष्ण नहीं सखरस के होंगे नहीं, यह का रूप प्योर प्रकट होगा ऐसे भाव वाली गोपियों के अतिरिक्त और कहीं ये प्रकटी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इसलिए यह संक्षेप में कृष्ण का ये तत्व वर्णन। अब एवे कहीं संक्षेपे कही आराधा तत्व रूप कितना मिले अब एवे कहूं एवे कही आराधा तत्व रूप अब आराधा तत्व कृष्ण तत्व निरूपण करने में राधा जी को छोड़कर के कृष्ण का तत्व निरूपण नहीं हो सकता, ऐसे राधा जी का तत्व निरूपण करने में कृष्ण का तत्व नहीं होगा तो अच्छा मान लो कि हम भक्तों का कोई स्वरूप वर्णन कर रहे हैं तो भगवान का स्वरूप नहीं वर्णन करने से होगा
संपूर्ण नहीं होगा
नहीं संपूर्ण माने होगा ही नहीं, और भगवान का रूप यदि वर्णन करना होगा ना तो भक्तों का जरूर होगा, भगवान का रूप वर्णन करेंगे तो गुरु जी को छोड़कर के वर्णन करें तो होगा ना, भक्तों के प्रधान तो गुरु जी हैं इसलिए गुरु जी का भी जरूर वर्णन करना पड़ेगा, बिना गुरु के भगवान का नहीं और भगवान के बिना। अब यहाँ पर राधा जी का तत्व वर्णन करना है। अच्छा, कृष्ण का रूप जो वर्णन किया हुआ अंत में ये लाए राधे केव सरस्वरूप वर्णन किया, किंतु अंत में ये क्या बतला, कृष्ण का तत्व बतला रहे, उसमें राधिका के भांति ही कृष्ण को अपने रूप को आस्वादन करने की अभिलाषा। किंतु खेद हुआ कि मैं इसको काट नहीं सका आस्वादन राधिका के भांति, क्यों, राधिका में ऐसी चीज है जो हमारे अंदर नहीं है, वहां पर वो पराभूत हो गए उस तत्व के, क्योंकि कृष्ण ने अपने मुख से ही बतलाया है, वो राधिका के लिए ही बतलाया है, न पा रहे हैं राधिका के साथ में ही कृष्ण का ऐसी रसराज मूर्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी, गोपियों के साथ में भी नहीं होगी, होगी किंतु इतनी चमत्कारकारी रूप नहीं होगा जैसे राधिका के साथ में होगा। वहां पर कृष्ण संपूर्ण रूप से प्रसन्न चित्त रहे, और यदि राधिका जी न रहे और सब गोपियां रहे तो कृष्ण का मुख प्रसन्न रहेगा, मालूम होगा जब कुछ चीज का अभाव रह गया, इसलिए कृष्ण में उस रस में भी अभाव हो, इसलिए उनके साथ पूरा रहने में ही कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य सर्वविध ऐश्वर्य मोहनत्व इत्यादि सब प्रकाश। उसी प्रकार से हमारे अभी बृहद भगवतामृत हम लोगों ने रसावा जो पाठ किया
रसायन
उसमें देखा था, जहां जहां कृष्ण का गोपियों के साथ में संबंध है, यहां तक कि भीष्म पितामह को दिया और किसका दिया, अक्रूर जी का लिया, उद्धव जी का लिया, ये सब लोग जो कृष्ण रूप का वर्णन कर रहे हैं उन सब में राधिका जी को जहां या गोपियों को रहे तभी वहां सुंदर स्तौति हुआ और कृष्ण उसको ग्रहण श्रवण करें, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कृष्ण का चित्त संपूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं, उनको प्रसन्न करने के लिए ऐसा है यही। तो कृष्ण आप राधा जी का जब वर्णन करें तो यह बतला रहे कृष्ण अनंत शक्ति साथ तीन प्रकार, कृष्ण में अनंत शक्ति और अनंत शक्ति एक पराशक्ति से प्रकाशित, कृष्ण एक हैं इसलिए उनकी शक्ति भी एक, अनंत शक्तियां नहीं है किंतु उसके प्रकाश
एक शक्ति के ही अनंत प्रकाश,
जैसे एक कृष्ण के कोटि कोटि प्रकाश हैं, ऐसे एक ही शक्ति के कोटि कोटि प्रकाश अनंत प्रकाश, तो अनंत शक्ति उसमें तीन प्रधान चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति ना, ये सब किस लिए बतला रहे हैं, ये सब नहीं बतलाएंगे तो राधा जी की धारणा नहीं आएगी, राधा जी की धारणा नहीं आएगी। एक आदमी ने कहा, अच्छा ये कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े विद्वान हैं, सुनेगा महाप्रभु कितने बड़े विद्वान हैं, एक पंडित थे बड़े सूची धर्म और संसार के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं भट्टाचार्य और कौन
चक्रवर्ती
विद्या के चक्रवर्ती और
विद्यालंकार नए रत्न
जितने षट दर्शन आचार्य सब विषय में पारंगत हैं विद्वान और उनको एक सेकंड के अंदर में परास्त कर दिया एक प्रश्न के उत्तर में, और बतलाओ जो वो महाप्रभु जी कैसे जीत पाए, केशव काश्मीर को परास्त कर दिया ने? और विद्वान सुने लगे कैसे, विद्वान जगत संसार में जितने थे सबको दीक्षा देने वाले, सन्यासियों को भी सन्यासी बनाने वाले, कैसे बड़े विद्वान जो गए विद्या पढ़ने के लिए कहां
मिथिला
में, और जब उन विद्या पढ़ लिए न्याय इत्यादि नक्त न्याय पर सूक्ष्म में भी बेचना, एक चूर को लाख भाग किया जाए उस पर भी विचार करने वाले ये अनुमान इत्यादि सब इसमें, कौन चीज कैसी होगी उसी के लिए कितना विचार, अनुमान इत्यादि उस पर ये विचार करने वाले। तो वो आने लगे तो उन लोगों ने उनकी पुस्तकें सर दे दी। ये बड़ा मेधावी लड़का है, ये जाकर के जहां जाएगा स्कूल खोल देगा और वहीं पर ये विद्या आरंभ हो जाएगा, मिथिला का नाम टूट जाएगा, बस सब पुस्तकें ले। बड़ा इनको टूट हुआ, फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बस वहां से चल दी और अपने सीमा में आए। अपने उस सीमा में रहते मिथिला के तब तो वो लोग गड़बड़ करेंगे, इसलिए अपनी राज्य की सीमा में बंगाल की सीमा में आए। तो सोचा जैसे आप सब भूल जाएंगे जल्दी से, इसलिए वहीं पर बैठ करके और सब जितना पढ़ा था वो सबको लिख लिया, पूरा पुस्तक के पुस्तक जितनी पुस्तकें पढ़ी थी ना सब लिख लिया लेकर के। और पुस्तक ऐसे धुरंधर विद्वान और महाप्रभु जी को उनको हराने में कितना, जो इस सूत्र से उन्होंने निर्विशेष बात की स्थापना की थी, निराकार की स्थापना कर दी, उसी श्लोक से ही उन्होंने प्रमाणित कर दिया ये भगवान का रूप है, ये कृष्ण ही रूप है, वो निराकार नहीं है, जगत असत्य नहीं है, वो परम सुंदर समान सुरान भगवान, उसी एक सूत्र के द्वारा ही कर दिया, उनकी बोलती भी बन गई। तो महाप्रभु जी कैसे विद्वान है इसको कहा जाएगा ना, ऐसा गुरु ऐसे विद्वान है कैसे, जा रहे थे बचपन में न्याय की न्याय पढ़ रहे थे, न्याय के छात्र नहीं थे किंतु न्याय जानते, न्याय की एक कुसुमांजलि कोई ग्रंथ है उस पत्ती का व्याख्या लिखना, तो उनके साथ साथ में वो पंडित थे क्या नाम, उन्होंने 24 तत्व लिखे हैं, समर्थ थे
रघुनंदन
भट्टाचार्य जी थे, बहुत विद्वान अपने को समझता था वो लड़का छात्र, बहुत ब्रिलियंट छात्र, महाप्रभु से कुछ ऊपर पड़ता था। एक दिन बाय चांस दोनों नौका में कहीं बैठ करके जा रहे थे, तो उस लड़के ने कहा कि हमने इस पर एक पुष्पांजलि पर
टीका
रखी, तो आपने ही ने कहा जैसे हमने भी थोड़ी सी लिखी, तो उसने कहा कि देखें, तो महाप्रभु जी ने उसको दे दी। वो पढ़ा तो पढ़ते गया, देखता गया और उसका मुख उतरता गया, जितना ही पढ़ा उतना ही मुख उतरता गया और आंसू छलकते छलकते अंत में तो उसके आंसू एकदम गिरने लगे और उसने पुस्तक बंद कर दिया। बहुत दुखी हो अजय सखे, आप बड़े दुखी हो गए क्यों, रोने क्यों लगे, क्या बात हुई इसको पढ़ने से, तो हमने लिखा था सोचा था कि विश्व में इसके कट्टर का और कोई ग्रंथ नहीं, और जगत के बड़े बड़े विद्वान लोग उसकी मान्यता करें। मैंने देखा कि तुमने जो लिखा उसके चरणों की धूलि में भी ये नहीं लगेगा, इसको कोई पूछेगा ही नहीं, अरे इसलिए रो रहे हो, बस उठाया और पुस्तक गंगा में डाल। कैसे विद्वान होंगे ये बताओ, एक विद्वान के लिए बतलाने के लिए जब तक ऐसा नहीं कहा जाएगा तब तक विद्वता
उत्कर्ष समझ
में इसलिए लुप्त किया
है
कोई हम लोग, मुझे ऐसा न कहें जैसे ये मारना, उनको तो भक्ति का सजा, इसलिए कृष्ण रामंत शक्ति का तीन प्रकांड, राधा जी की महिमा वर्णन करने के लिए ये सब जानना पड़ेगा, भगवान का भजन करने के लिए कृष्ण का भी जो बतलाया वो जानना पड़ेगा, पर मैं नहीं जानता हमको जरूरत, हम तो मावा सरकाएंगे बस हो जाएगा, हम वृंदावन में सेवा कुंज में मैं झाड़ू दे मैं दूंगा बस यही करूंगा, वही ग्रह और कुछ नहीं, ये सब करने की क्या जरूरत है, ये सब जानने खाने की ये मुझको जरूरत नहीं, बस एकदम वहां पर ये नहीं होगा। जितना तुम इतना सहज समझ रहा है, साधन क्या हुआ, साधन में कष्ट क्या हुआ,
खा पीना नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, हवा नहीं खाएंगे, फल खाएंगे। अरे फल तू खाएगा, हमारा खर्चा है एक रुपये का एक दिन, और तुम्हारा होगा 50-60 रुपया, 100 रुपया एक दिन। तो तुम्हारा तुमने क्या किया? मान लिया कि किसी ने हवा नहीं खाया, तो क्या किया उसे, क्या हुआ? राधा जी की महिमा जानने के लिए तुमने ठोस रूप में क्या किया? तुमने सब किया यो बाद्य यो बाद्य नौ थी किया, इसे भगवान मिल जाएंगे, मैंने नहीं खाऊंगा, मैं चुपचाप रहूंगा, मैं प्राण प्रत्येक क्या करूंगा, तो उसे क्या होगा? ये सब तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे। तपस्या किसको कहते हैं? उसके लिए कष्ट के भी सुना चलपति ठाकुर जी ने, जैसे वो राधा जी की कृपा काम गायत्री को अनुशीलन करने के लिए, ये अक्षर क्या चीज है उसके लिए किया, उनका भाव क्या है, कैसे ये मिलेगा, रसिक वैष्णव का संग कैसे मिलेगा, ये होने के बाद ही राधा जी और कृष्ण मिलेंगे, और कुंज में झाड़ू हाथ में मिलेगा। श्यामानंद कुंज में झाड़ू दे रहे थे, कैसे कैसे दिया, ऐसे दे दिया, जीव गोस्वामी जी के छात्र बनकर के उनकी सेवा की। इतना सहज है ऐसा बात, वृंदावन में रह जाएंगे और हो जाएगा हमारा, तो हम लोग भी वृंदावन में रह करके बिना खाए पिए सेवा कुंज में वो चले जाते हैं, शाम को रात न रहते और सवेरे हमारी लाश वहां से निकल जाती, हम कुंज जाते झाड़ू देते थे। इतना सहज नहीं है, इसको कहते हैं आराधना। जैसे सुतियों ने आराधना की कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, गोपी बनने के लिए, कितना ब्रह्मा जी का कितना कल्प, ब्रह्मा जी कितने बदल गए तब तक ये तपस्या कर, ऐसे तपस्या करनी हुई, गुरु की सेवा से तपस्या आरंभ होती है, गुरु और वैष्णव वहीं से सेवा तपस्या होती है, उनके मन को प्रसन्न करने के लिए हम जो कुछ करेंगे वो यथार्थ तपस्या है। इसको छोड़ करके अपने मन से जो कुछ भी करेंगे वो कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए यदि हम लोग सचमुच में गुरु जी की प्रति विधान कर सके,
नारद जी को पार्वती मिली कैसे, बोले कि साधु की सेवा की, इसलिए मिले, नहीं तो नहीं।
ठीक है,
सत्सेवया दीर्घयापी, और दीर्घयापी सबसे,
और नारद जी को इतना देर कैसे लग गया, क्या बतला रहा
वो कसाई की
कसाय, नारद जी को कसाय क्या था जो इतने दिन तक तुमको रहना पड़ा,
निर्वन दर्शन नहीं दिया, बोले कि तुम इस जन्म में दर्शन नहीं पाओ, कि सात्विक वनवास
वनवास
की इच्छा थी, इच्छा अभी रह गई है। ठीक है,
कितने बड़े मार्के की बात,
सात्विक
वनवास कहते हैं कि उनकी इच्छा थी कि मैं वन में वास करूंगा शांति और भजन करूंगा,
ये कुल में कोई रास्ता है,
इतना बड़ा बड़ी बात है। इसलिए शुभ रसिक वैष्णव तत्व के यदि हों, उनके साथ में मरेंगे मर जाएंगे, किंतु उनके संग में रह करके ऐसे भावों की पुष्टि करेंगे और इसको कहते हैं साधन, उपयुक्त साधन आराधना। और अपने मन से हम करेंगे तो कुछ जानते तो हैं, खूब वैराग्य कर लिया आदमी कभी, और क्या करेंगे, क्या करेगा तू अपने मन से, क्या करेगा तू, कुछ भी नहीं, वहां की धूली उठा करके लगाएगा। वो नियम है जमुना राधा कुंड में तुम स्नान करेगा ना नहीं, तो राधा कुंड में डूब मारो तभी होगा, भाई नहीं होगा। इसलिए वैष्णव चरणों की सेवा करते हुए सचमुच में साधन, उपयुक्त साधन भजन करो। हम लोग को जो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, किंतु जो कुछ भी हुआ गुरु वैष्णव की सेवा से, इसीलिए हम लोग टीके हुए, तुम लोग भी इसी पथ पर चलो, कभी भी इधर उधर मन के पथ पर हो इधर उधर, नहीं तो सब जंजाल हो जाएगा। इसलिए इन सबको जानना पड़ेगा, ये ऐसे ही उन्होंने चैतन्य से चरितामृत लिख करके और ये ग्रंथ ने लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं इसको ग्रंथों को, कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म की कितनी सुकृति और गुरु वैष्णव की कृपा थी, ये सब में हम लोग का धीरे धीरे अब रुचि लगने लगी, प्रवेश होने लगा, इनको जानने की उत्कंठा हो रही है। इस जन्म हो दूसरे जन्म हो तुम लोग को भी जब तक ये चीजें नहीं आए तब तक इस भक्ति रसामृत सिंधु में जाने का प्रवेश नहीं होगा ये समझ रखो। इसलिए इसको कहते हैं आराधना। तो कैसे हम समझे और जो विद्या से नहीं होगा कैसे होगा उनकी शुश्रूषा से हरि गुरु वैष्णव की शुश्रूषा से हमारे हृदय में जो भावना उस भावना के द्वारा ही और किसी के द्वारा। इसलिए कहते हैं कि अनंत शक्तियां एक शक्ति पराशक्ति से और पराशक्ति के एक ही के विविध प्रकाश हैं उनमें विविधों में से तीन प्रधान है ये जानना इतना तो जानना ही पड़ेगा नहीं तो राधा जी को समझेंगे कि जगत की कोई बस इसके अतिरिक्त नहीं जान अब यहां आज तक इसी को अंतरंगा बहिरंगा तथा शक्ति कहे जाए अंतरंगा स्वरूप शक्ति सदा अब अगले दिन इसकी हम लोग देखते हैं। मन से सुनो भजन करो आगे इन सब चीजों को समझने की चेष्टा करो हृदय में कहीं दौड़ भाग इधर उधर मत करो अधिक वो सब कब करना चाहिए जबकि संग न मिले तो खूब गोवर्धन जाओ राधा कुंड में रहो किंतु यदि कोई वैष्णव मिल जाए तो भाई ये सब सर्वान कमान विहाय बिहार सबको छोड़ो सब आकांक्षा इत्यादि सब छोड़ करके सुजोग से वो ऐसा संग मिला और कल यदि न मिले तो बस हो गया भजन साधन इसलिए साधन भजन करो भगवान के साथ प्रथम लोग पंचा कल्प करो
गोपाल I'm